अय्यूब अध्याय 23 पद 1 और 2। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुटकुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराने से भारी है। अय्यूब कहता है कि जो उसकी अवस्था है वो वास्तव में उसके उन शब्दों से कहीं अधिक गंभीर है जिनका प्रयोग वो उनके वर्णन में कर रहा है। उसके शब्द उसके कष्टों का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। अध्याय 23 पद 3। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। तुम मुझसे कहते हो, परमेश्वर को खोज और शांति प्राप्त कर, परंतु काश मैं जान पाता कि उसे कहां खोजूं। अर्थात परमेश्वर की खोज मनुष्य में अंतर्निहित है। डॉक्टर हेनरी ड्रमन ने अपनी पुस्तक नेचुरल एंड सुपरनेचुरल में लिखा है, मनुष्य के जीव द्रव्य में ही वे तंतु उपस्थित है जो पिता परमेश्वर को खोजते रहते हैं। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है। ये अय्यूब की ही नहीं, अनेक लोगों के मन की पुकार है। वे लोग परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, परंतु होता यह है कि हम परमेश्वर को उचित स्थान में नहीं खोजते हैं, जैसे अय्यूब यहां पद 8 और पद 9 में कहता है। अध्याय 23 पद 8 और 9। देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाई ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता, वो तो दहनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है। पद 6 में वो कहता है, क्या वो अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता जैसे तुम करते हो? नहीं, वो मुझ पर ध्यान देता, वो मेरी सहायता करता, वो मुझे बल प्रदान करता, परंतु तब जब मैं उसे खोज पाता। मैं ये जानता हूं, मैं आगे जाता हूं, मैं पीछे हटता हूं, मैं बाईं ओर जाता हूं, मैं दाहिनी ओर जाता हूं, मैं जानता हूं कि वो है परंतु मैं उसे देख नहीं पाता हूं, वो मुझे दिखाई ही नहीं देता है। मैं परमेश्वर को प्राप्त ही नहीं कर पाता हूं। वो परमेश्वर को आंखों से देखना चाहता है, परंतु परमेश्वर आत्मा है, वो कैसे दिखाई देगा? यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसे भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर ऐसे उपासकों की खोज करता है। अय्यूब अध्याय 11:7 में एलीपाज ने अय्यूब से कहा था, क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? नहीं, परमेश्वर को यदि ज्ञान के आधार पर खोजा जाए तो वो वहां नहीं पाया जाएगा। ये बड़ी रोचक बात है कि अनेक जन परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनके लिए ठोकर खाने का कारण हो जाता है। अब सोचिए कि परमेश्वर को खोजने के लिए यदि आप में बौद्धिक प्रतिभा की आवश्यकता होती तो हम जैसे कितने साधारण लोग इस खोज से निष्कासित कर दिए जाते, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। एक छोटा बच्चा भी उसे खोज सकता है। तेजस्वी प्रदायापक और विद्वान लोग कहते हैं, मैं तो नास्तिक हूं। एक बच्चा परमेश्वर के ज्ञान में होता है, वो उसके भजन गाता है और उसके बारे में बातें करता है। मती में लिखा है, मती 21:16, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। मती 18:2-3 में लिखा है, यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखिए हमारी बुद्धि का ये कैसा अपमान है। हम ये सोचकर प्रसन्न होना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सारी समस्याओं का हल खोज लेंगे, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर की पहेली मनुष्य की बुद्धि से बुझाई नहीं जा सकती। परमेश्वर एक बच्चे के मन में अर्थात विश्वास के क्षेत्र में पाया जाता है जो आत्मिक क्षेत्र है। आपको भौतिक अवस्था से निकलकर विश्वास में कदम रखना होगा जो आत्मिक क्षेत्र है, और वहां आपको परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर को पाने में आपकी बुद्धि को बहुत कम महत्व प्राप्त है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उसे पहचाने, इसलिए वो अपने ज्ञान को हमारे स्तर तक ले आता है कि हम उसे जान ले और पहचान ले तथा उसके साथ संगति करें। ये कैसा मनोरम अनुभव है। अतः आयु पुकारता है, भला होता कि मैं जानता वो कहां मिल सकता है। मैंने सब ओर खोजा, आयुब दृष्टि ऊपर उठा, ऊपर दृष्टि उठा। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा परमेश्वर को चारों ओर खोजते हैं परंतु ऊपर नहीं देखते हैं? इसका कारण यह है कि मनुष्य ने हमेशा परमेश्वर को अपने स्तर तक लाने का प्रयास किया है। परमेश्वर उनके विचार में मानव रूप रखता है, अर्थात वे परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देखते हैं। ये साधारण सी बात है, क्योंकि मनुष्य का परमेश्वर प्रायः उसके अपने रूप की छवि होता है। सत्य तो यह है कि आप स्वयं ये नहीं जानते कि आप अपने आप से जो प्रेम करते हैं वो आपके आत्म प्रेम के बोध से कहीं अधिक होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को ये कहते सुने, मैं अपने आप से घृणा करता हूं, तो ये सरासर झूठ बात है। इस बात में भी वे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप उनकी सराहना करें और कहें, ऐसा मत बोलो, आप तो बहुत अच्छे हैं। यहां छिपा हुआ सत्य तो यह है कि आप अपने आप से बहुत प्रेम रखते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो लोग साथ रहते हैं वे एक से दिखने लगते हैं। आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों की राय इस विषय में क्या है। उनके अनुसार जब आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तब आप अपने आप से अत्यधिक प्रेम करने के कारण बिल्कुल अपने जैसे ही इंसान चुनते हैं और उसे विवाह कर लेते हैं। यही कारण है कि ये लोकोकित प्रचलित हो गई। वे साथ रहते रहते एक साथ दिखने लगे। कहने का अर्थ ये है कि दूर दृष्टि के कारण आपने एक ऐसे साथी का चयन किया जो आपके सदृश था। इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को अनंतता में अवस्थित करना चाहता है। यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसा करता, या यहां रहता, या मेरी प्रतिक्रिया ऐसी होती। इस प्रकार उसका ईश्वर उसी का प्रतिरूप बन जाता है। वो अपना प्रतिबिंब अनंतता में केंद्रित करके उसी की उपासना करने लगता है। ये उसी की प्रतिबिंब होता है। मुझसे लोग प्रायः कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। वास्तव में वे जो कह रहे हैं वो ये है कि यदि वे परमेश्वर होते तो वे ऐसा नहीं करते। वे कहीं अधिक बुद्धिमानी का काम करते, उनकी योजना कहीं अच्छी होती। यदि जगत का प्रबंधन उनके हाथ में होता तो संसार का रूप ही कुछ और होता, परंतु हर बात की सीमा भी तो होती है। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है। बुद्धि में वो नहीं है, वो बौद्धिक खोज से प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि आप अपने आप को फैलाएं तो भी आप उसे खोज नहीं पाएंगे। परमेश्वर मसीह यीशु में पाया जाता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ। वे जो उसके पास आ चुके हैं उन्होंने परमेश्वर को खोज लिया है। छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज के प्राचार्यों तक हम सब एक ही मार्ग से उसे खोज पाते हैं। अपनी बुद्धिमानी को एक और रखकर क्रूस के पास घुटने टेक कर हम कहें, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तो हमें परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। ये कहने के बाद वो नहीं जानता कि परमेश्वर को कहां खोजे। वो बड़े ही उच्च स्तर की बातें करता है। अपनी निराशा और पीड़ा से उभर कर वो ये अनमोल वचन कहता है और फिर से दुख में डूब जाता है, जैसे कि वो एक पहाड़ पर अचानक प्रकट होकर अपना तेज प्रकट करके किसी गुफा में छिप गया है। वो कहता है, अध्याय 23 पद 10, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। मैं ना तो उसे खोज पाता हूं ना ही उसे देख पाता हूं, परंतु वो जानता है कि मेरा चाल चलन कैसा है। अध्याय 23 पद 10 में आगे लिखा है, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आयुब के जीवन में कहीं गहराई में दृढ़ विश्वास है जो उसे थामे हुए है। उसे अपनी समस्याओं को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, परंतु उसका विश्वास गहराई में जड़ पकड़े हुए है। वो दृढ़ता से खड़ा है क्योंकि उसके जीवन की गहराई में कहीं पर आधारभूत सिद्धांत स्थित है। वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ताएगा तपाएगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर का कोई उद्देश्य आवश्यक है। मैं अपनी परख के बाद शुद्ध होकर निकलूंगा। अति संभव है कि पत्रस के मन में आयुब का विचार था जब उसने लिखा, पहला पत्रस 14 अध्याय 12 पद, हे प्रियो, जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 पद, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। पत्रस परमेश्वर की उस संशोधन प्रक्रिया के बारे में कह रहा है जिसके द्वारा मैल दूर किया जाता है। आयुब अपनी अवस्था को शोधन प्रक्रिया मानता है और कहता है, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अध्याय 23 पद 11 और 12, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। ये बड़ी ही रोचक बात है कि आयुब जो इब्राहिम का समकालीन और संभव है कि वो उससे पहले का था, उसके युग में परमेश्वर का वचन था। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं? मनुष्य में एक आत्मिक मानवता है, एक संसारिक मानवता है। वे जो नया जन्म पा चुके हैं उनमें इन दोनों मानवताओं में संघर्ष होता रहता है। आत्मा देह की लालसा करती है और देह आत्मा की लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों में संघर्ष चलता रहता है। मैं ये तो सुनिश्चित करता हूं कि मेरी देह का पोषण पूरा हो, ये मैं मानता हूं कि मैं उसे अनुपयुक्त भोजन भी देता हूं, परंतु देखा जाए तो मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखता हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने खाने पीने में कोई कमी नहीं करता हूं। मैं संतुलित आहार खाता हूं कि मेरी देह स्वस्थ रहे। मैं अपनी सांसारिक देह के लिए भोजन का तो पूरा पूरा ध्यान रखता हूं, परंतु अपनी आत्मिकता के पोषण में मैं कैसे लापरवाही दिखाता हूं। ये बड़ी ही अचंभे की बात है कि मनुष्य अपने आत्मिक मनुष्य को कैसे अपौष्टिक आहार खिलाता है जो स्वास्थ्य वर्धक नहीं है और आत्मिक खून की कमी उत्पन्न करता है। आयुब ऐसा नहीं था, उसने कहा, मैं तेरे वचन को अपने आवश्यक भोजन से अधिक महत्व देता हूं। मेरे लिए तेरे वचन का पोषण शारीरिक पोषण से अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब में ऐसी समझ होनी आवश्यक है कि हम आत्मिक मानव के पालन पोषण पर उचित ध्यान दें। आत्मिक मानव का एक ही उचित भोजन है और वो है परमेश्वर का वचन। आपको इसका पोषण करना है। आयुब ने कहा, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। अध्याय 23 पद 13 से लेकर 17 तक। परंतु वो एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वो पूरा करता है और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूं। जब मैं सोचता हूं तब उससे थरथरा उठता हूं, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमंजस में डाल दिया है, इसलिए कि मैं इस अंधियारे से पहले काट डाला ना गया और उसने घोर अंधकार को मेरे सामने से ना छिपाया।